शांति। हम सबके बीच परम श्रद्धे आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी पहुंच चुके हैं। सभी करतल धोनी के साथ उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और भाई बहनों से निवेदन है कि आप सब थोड़ा सामने आ जाएं, जो पीछे बैठे हैं और सामने आ जाइए। जो भी भाई बहने पीछे बैठे हैं कृपया सामने आए। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन आज की क्लास का विषय। आत्म प्रकाश भाई जी इस पर सभी का क्लास कराएंगे। आप सहज ही और बहुत ही सरल हैं, मृदुभाषी है, जैसे आप का टोली विभाग है आपकी वाणी भी ऐसी ही मीठी है। आप ने यह ज्ञान नागपुर महाराष्ट्र से 1972 में प्राप्त किया। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से 1973 से एमएससी स्वर्ण पदक के साथ पास किया। सन 1976 में माउंट आबू मुख्यालय में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा समर्पित किया। आपने अपना ही जीवन नहीं, लेकिन मैंने देखा आपका पूरा परिवार ही बाबा के इस यज्ञ में समर्पित है। आपकी तीन भांजियां जो है वो सेवा केंद्र पर समर्पित है। आपके बहन का पुत्र भांजा वो भी माउंट आबू में समर्पित है। आपके भ्राता जी ज्ञानेश्वर भाई वो भी माउंट आबू में समर्पित है और माता पिता भी समर्पित रहे। ऐसा पूरा झाड़ का झाड़ और आपकी बहन अकोला में है। आप सोचो कितना भाग्यशाली परिवार है। इन्होंने स्वयं बाबा को अपना जीवन दिया, लेकिन अपने पूरे परिवार का भी कल्याण किया। और आप बेहद विश्व का भी कल्याण कर रहे हैं। आपने विश्व के पांचों ही महाद्वीप अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया के 96 देशों का भ्रमण करके ईश्वरीय संदेश तथा राज्यों की शिक्षाएं देकर अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। भारत के अनेकानेक स्थानों पर आप योग तपस्या भट्टी कराते हैं। युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक हैं। यह मधुबन ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन तीनों परिसरों में टोली विभाग संभालते हैं। मानवता की सेवा का दर्पण है जीवन आपका। मानवता की सेवा का दर्पण है जीवन आपका और दिव्य गुणों का उपवन है जीवन आपका। बाबा के अति स्नेही अति प्यारे आत्मिक शक्ति से भरपूर है जीवन आपका। ऐसे हमारे आत्म प्रकाश भाई जी आज सभी का क्लास कराएंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
ओम शांति। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इस संगम युग में विश्व पिता परमात्मा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को विशेष विश्व परिवर्तन के महान कार्य के लिए निमित्त बनाया है। तो वो विश्व परिवर्तन का कार्य सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यकता है स्व परिवर्तन की, क्योंकि जब तक हम स्वयं को परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक दूसरों को परिवर्तन करने की प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। और स्व परिवर्तन के लिए स्वयं भगवान हम सभी बच्चों को ज्ञान और योग की पालना हर रोज देते हैं। उस पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें स्व परिवर्तन से देना है। वैसे भी कहते हैं, जब हम बदलेंगे जग बदलेगा। जब हम अपने पुराने संस्कार को स्वभाव को परिवर्तन करके सतयुगी नई दुनिया के स्वभाव संस्कार को अपनाते हैं तो स्वयं का परिवर्तन अच्छी तरह से होता है। इसलिए स्व परिवर्तन की प्रक्रिया को हमें तेज करना होगा। सबसे पहली बात है, परिवर्तन किसको कहते हैं? परिवर्तन अर्थात परि जैसा वर्तन व्यवहार, परियो जैसा फरिश्तो जैसा व्यवहार होना, उसको कहते हैं परिवर्तन करना। तो ऐसा श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए तीन शक्तियों की आवश्यकता है। सबसे पहले ज्ञान के शक्ति की आवश्यकता है। ज्ञान से हमें महसूसता होती है। जब ज्ञान सूर्य शिव पिता से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं मुरली के द्वारा, तो हमारी महसूसता की शक्ति बढ़ती जाती है। कौन सी कमी कमजोरी मुझ आत्मा में है वो स्पष्ट हमें नजर आती है। दूसरे शब्दों में उसको रियलाइजेशन पावर भी कहते हैं। रियलाइजेशन अर्थात रियल आय, जो हमारी तीसरी आंख है वो रियल आय खुल जाती है तो हर बात का हमें रियलाइजेशन होता है। हर बात हमें स्पष्ट नजर आने लगती है। और ज्ञान अगर स्पष्ट नहीं होता है तो महसूसता की शक्ति हमें नहीं अनुभव होती है। परिणाम स्वरूप कई कमजोरियां हमारे जीवन में वर्षों तक रहती हैं। इसलिए ज्ञान की गहराई को मनन चिंतन के द्वारा बढ़ाते रहना जरूरी है। परिणाम स्वरूप हमारी महसूसता की शक्ति बढ़ती जाती है और जीवन में परिवर्तन आने लगता है। तो मनन चिंतन के द्वारा इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। दूसरी शक्ति है योग की शक्ति। किसी भी कमी कमजोरी की हमें जब महसूसता होती है तो उसको परिवर्तन करना आवश्यक होता है। तो योगाभ्यास के द्वारा हमें परिवर्तन शक्ति प्राप्त होती है। तो कई बार हम देखते हैं कोई कमी कमजोरी महसूस होने के बाद भी, योगाभ्यास करने के बाद भी उसमें परिवर्तन नहीं आता है। जब हम व्यवहार में आते हैं, कभी थोड़ा रोब आता है, कभी अहम भाव जग जाता है, कभी फीलिंग आती है, इसका मतलब विकारों के अंश आत्मा में अभी भी बाकी हैं। मोटे रूप से तो हम विकारों को जीतते हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे, उनके अंश आत्मा में रह जाते हैं। इसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। हम मधुबन निवासियों ने एक बार बाप दादा से पूछा था कि बाबा, मेरा योग शक्तिशाली है या नहीं, कैसे पता चले? तो बाबा ने कहा था, शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। पहली निशानी होती है योग अग्नि के रूप में महसूस होता है, और उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो गए हैं, ऐसी अनुभूति एक तरफ होती है, और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि सिर पर का पापों का बोझा घटता जाता है। खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी संपूर्णता के मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसी दो अनुभूतियां करते हुए हमें अमृत वेले और नमा शाम के योगाभ्यास को शक्तिशाली योग के रूप में अनुभव करना जरूरी है। उसमें भी विशेष 2016 में बाबा ने इशारा दिया है, अभी साधारण योगाभ्यास का समय समाप्त हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है वो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। ज्वाला स्वरूप योग उसको कहते हैं जिसमें योग की ज्वाला तेज अनुभव होती है, और उसमें हमारे 63 जन्मों के कठोर संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसी अनुभूति योगाभ्यास में करते हैं तो ये कह सकते हैं मेरा योग शक्तिशाली है। इसलिए इसके लिए आवश्यकता है संपूर्ण एकाग्रता की। जब हम योगाभ्यास में संपूर्ण एकाग्रता के साथ योग करते हैं तो योग की अग्नि प्रज्वलित होती है, और उस अग्नि में हमारे विकर्म भस्म होते हैं, विकारों के अंश वंश समाप्त होते हैं, क्योंकि हमें विष्णु के राजधानी में जाना है। विष्णु अर्थात अंश मात्र भी विकार का विष, विकार का जहर आत्मा में ना हो, तभी हम विष्णु वंश में बहुत समीप जा सकेंगे। इसलिए ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को जरूर बढ़ाते चलें। तीसरी शक्ति है धारणा की शक्ति। ये ज्ञान से हमें युक्ति मिलती है, योग से हमें शक्तियां मिलती हैं। युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति और दिव्य गुणों की प्राप्ति। तो जितना हम ज्ञान से युक्तियां प्राप्त करते हैं, योग से शक्तियां प्राप्त होती हैं, उतना हम अपनी कमी कमजोरियों को मिटाने में सफल होते हैं और दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने लगते हैं। मेरा जीवन दिव्य गुणों से संपन्न हो, इस पर हमें विशेष धारणा ध्यान देना जरूरी है। मुझे याद है 1976 में मैं पहली बार मधुबन में सेवा के रूप में आया था, सेवाधारी बनकर, और हम 50-60 सेवाधारी बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिल रहे थे, तो बाबा ने दृष्टि दिया और फिर कहा कि अभी ट्रिपल सेवा करना सीखो। ट्रिपल सेवा अर्थात एक तो कर्मणा सेवा, दूसरी मनसा सेवा और तीसरी दिव्य गुणों की धारणा करके दिव्य गुणों का दान देने की सेवा करना, इसको कहते हैं ट्रिपल सेवा करना। क्योंकि हम ज्ञानियों की सेवा ज्ञान देकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिव्य गुणों का दान देकर उनकी सेवा हम जरूर कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने भी इशारा दिया है कि अभी आपको चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी चाहिए। चलन और चेहरा अर्थात चरित्र हमारा श्रेष्ठ हो और जीवन हमारा दिव्य गुणों से संपन्न हो। मेरे जीवन रूपी पेड़ पर सभी दिव्य गुणों के फल और फूल लगे हुए हो, लदे हुए हो। बाबा ने जितने भी 36 प्रकार के गुण हमें बताए हैं, सभी दिव्य गुणों के फल और फूल मेरे जीवन रूपी वृक्ष पर लगे रहना चाहिए, तभी हम अनेक आत्माओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। तो धारणा, धार प्लस ना, अगर धारणा दिव्य गुणों की हमारे जीवन में नहीं होगी तो हमारी ज्ञान की तलवार पर धार नहीं होगी। परिणाम स्वरूप जो हम ज्ञान सुनाते हैं, सुनने वालों पर उसका कोई असर नहीं होता है। इसलिए हमें पहले जीवन में श्रेष्ठ गुणों की धारणा करना है और अनेकों की ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने के लिए प्रेरित करना है। अभी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हमें लाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें श्रेष्ठ स्वमान पर स्थित रहना होगा। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं या मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, इस सिंहासन पर हमें बैठे रहना है, डटे रहना है। माया कितना भी अपोजिशन करें, हमने इस सिंहासन को नहीं छोड़ना है। तभी हमारे मन में विश्व परिवर्तन करने के ख्यालात सदा चलते रहेंगे और विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया में हम अधिक से अधिक सहयोगी बनते जाएंगे। उसके लिए हमें विशेष ध्यान देना है, हमारे मन में हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना पनपती रहे। सबका भला हो, सब आगे बढ़ते रहें, सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते रहें, ऐसी भावना सदा पनपती रहें। दूसरी बात, हमें अपने बोल पर और कर्मों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। तीन शब्द हमें कभी भी नहीं भूलना है, सिंपल, सैंपल और एग्जाम्पल। सिंपल रहना है, सैंपल बनना है, और जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हम सारी दुनिया वालों को देते हैं, ऐसा मेरा भी कोई एग्जाम्पल दें, ऐसी मुझे श्रेष्ठ जीवन बनाना है। तो सबके साथ रहते हुए कर्मों पर हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और करेंगे, इस प्रक्रिया को कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तीसरी बात, विश्व परिवर्तन करने के लिए मनोबल के द्वारा विश्व की सेवा मनसा के द्वारा करते रहना जरूरी है। उसके लिए आत्मा रूपी बल्ब को शक्तिशाली बनाते रहना जरूरी है। 1000 वोल्टेज का जो बल्ब होगा उसको हम बाथरूम में नहीं लगाएंगे, उसको चौराहे पर लगाएंगे ताकि 1000 लोग उससे लाभ लेते रहें। तो ये मेरा आत्मा रूपी बल्ब भी, इसका वोल्टेज बहुत अच्छी तरह से बढ़ता रहे ताकि मैं 1000 लाखों 1000 करोड़ों आत्माओं की सेवा करने की क्षमता को प्राप्त करता रहूं। इसके लिए मनसा सेवा हमें जरूर हर रोज करते जाना है। खास हमें जहां हमारा सेवा क्षेत्र है वहां करनी ही है, लेकिन आम सारे विश्व की आत्माओं की सेवा हमें जरूर करना है। 10 बेटों की माँ होती है तो वो सोचती है इतने बच्चों का मैं कैसे ध्यान रखूं, कैसे खिलाऊं, क्या खिलाऊं। तो जब हमारे मन में समान रहता है मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, तो सारे विश्व की आत्माओं के परिवर्तन के लिए मुझे कुछ न कुछ करते रहना है, यह ध्यान हमारा सदा रहेगा। और उसके लिए हर रोज मनसा सेवा के द्वारा शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता का सहयोग हमें अनेक आत्माओं को देते रहना है, क्योंकि अनेक आत्माएं अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन उन्हों में आत्मविश्वास और साहस की कमी होती है। जब हम मनसा सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं को शक्तियों का दान देते हैं तो उन्हों को भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए विशेष सहयोगी हम बन सकते हैं। इसलिए इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। हमारे जो भी भाई बहने सारे विश्व के हैं, उन्हों को हमें जरूर सहयोग कुछ न कुछ देते रहना है। बाबा ने भी कहा है उनके दुख दर्द को हमें समझना है और उनको सहयोगी भी बनना है। इसके लिए रहम दिल बनना जरूरी है। हमें कठोर दिल भी नहीं बनना है, कोमल दिल भी नहीं बनना है, लेकिन रहम दिल बनना है। कोमल दिल वाला बनना अर्थात किसी के दुख दर्द को देखकर उसमें बह जाना, खुद भी उस दुखी होकर रहना, उसको कोमल दिल वाले कहेंगे। कठोर दिल अर्थात किसी के दुख दर्द को हम न पहचाने और उनको जो सहयोग चाहिए वो हम न दे सकें। ऐसा कठोर दिल भी हमें नहीं बनना है, लेकिन रहम दिल बनना है। किसी के दुख दर्द को पहचान कर जितना हम सहयोग दे सकें देते रहें। दातापन की भावना हमारे मन में सदा पनपती रहे, इसके लिए ये मनसा सेवा अच्छी तरह से बढ़ाते रहना है। प्रकाश मणि दादी जी, गुलजार दादी जी के तन में एक बार आई थी यहाँ मधुबन में, जब उनका 13 दिन का भोग लगता था तो बाबा ने कहा था, दादी ने कहा था कि हरेक आत्मा मनसा सेवा कर सकता है। फर्क इतना ही है, जितनी आत्मा की लाइट होगी तेज उतनी दूर तक वो सेवा कर सकता है, प्रभावशाली। इसलिए आत्मा की लाइट को भी बढ़ाते जाएं और अपने सेवा क्षेत्र का जो दायरा है, एरिया है, उसको भी हमें बढ़ाते जाना है। क्योंकि वाचा कर्मणा सेवा हमने खूब कर ली है और करने का थोड़ा चांस अभी और दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद केवल मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। अनेक आत्माओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से उनको सहयोग देना होगा। और वो इस स्पिरिचुअल बिजनेस में जो आत्माएं बहुत अच्छी तरह से सहयोगी बनेंगे, वो धैर्य आत्माओं की दुआएं तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन परमात्मा की भी दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। अभी विश्व की आत्माओं की सेवा करने के साथ साथ हमें इन 5 तत्वों की भी सेवा करना जरूरी है। विश्व परिवर्तन में ये 5 तत्व भी आते हैं। तो बाबा ऐसी योगी बच्चों की तलाश कर रहे हैं जो ये विशाल सेवा में सहयोगी बन सकें, क्योंकि इन तत्वों को पतित हमने ही बनाया है, तो इन तत्वों को पावन हमने ही बनाना है। इसलिए इन तत्वों को मनसा सेवा के द्वारा हमने पावन बनाना है। उसके लिए कौन सी विधि अपनाएं? मुझे याद है प्रकाशमणि दादी जी के देह त्याग के बाद 13 दिन जब बाबा को भोग लगाते रहे, एक बार बाबा ने इशारा दिया कि तत्वों को आप देव या देवी के रूप में सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर सकते हैं, और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में हैं, बाबा से शक्ति आपकी आत्मा पर आ रही है और आपके द्वारा उस देवी या देवता पर वो शक्तियां जा रही है। सूर्य देवता है, धरती माता है, देवी है, तो ऐसे 5 तत्वों को आप योगदान दे सकते हैं। 5 तत्वों को पावन बनाने की, परिवर्तन करने की सेवा में अच्छी तरह से हाथ बटा सकते हैं। और इस सेवा में जितना हम सहयोगी बनते हैं उतना डायरेक्ट बाबा से हमें दुआएं मिलती रहती हैं, और वही हमारी असली कमाई हम समझते हैं। इसलिए हर रोज हमें इन तत्वों को भी योगदान देते रहना है और आत्माओं को भी योगदान मनसा सेवा के द्वारा करते रहना है। लेकिन देखा गया है जब हम मनसा सेवा करते हैं विश्व परिवर्तन कार्य के लिए, तो कभी कभी हमारे मन में संशय आता है मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, संशय आता है। इसमें मुझे रिजल्ट मिलेगी या नहीं, इस संशय आने के दो कारण हैं। पहला कारण है मनसा सेवा करने का साधन इतना शक्तिशाली प्रभावशाली नहीं है, और दूसरा कारण है ऐसे श्रेष्ठ सेवा करने के अनुभव मेरे पास प्रचुर मात्रा में नहीं है, इसलिए ऐसा संशय मन में हमारे आता है। हमें जो भी हमारे बड़े हैं दादिया दादाएं, उनसे एक बात सीखनी है, जब वो मनसा सेवा करते थे करते रहे, उनको बहुत पॉजिटिवली सफलता मिलती रही, लेकिन सोचने की बात है उन्होंने वो बेहद मनसा सेवा का साधन कैसे जुटाया, ये सोचने की बात है। पहले पहले कराची से लेकर उन्होंने यज्ञ की हड्डी हड्डी सेवा की, कर्मणा सेवा बहुत की, और कर्मणा के द्वारा अनेक आत्माओं की दुआएं उनको मिलती गई, उनके बाद उनके बोल में बल आ गया, वाणी में वीणा बजने लगी, उसके द्वारा उन्होंने हजारों लाखों आत्माओं को ज्ञान रत्नों का ध्यान दिया और अनेकों की दुआएं हमें मिलती रही, और उसके बाद उनकी मनसा शक्तिशाली बन गई और वो लाखों करोड़ों की सेवा करने की क्षमता को प्राप्त करते रहे। तो इसलिए सेवा कर्मणा हमने खूब करना है। सेवा कोई भी हो, चाहे सफाई करने की हो, बर्तन मांजने की हो, कोई भी सेवा हो, हमने उसको प्रभु प्रसाद समझकर स्वीकार करना है और दिल से उस सेवा को करना है। अपने पोस्ट, लौकिक पोस्ट और पोजीशन को किनारे रख देना है। अपने ऑफिस में घर में बड़े होंगे, लेकिन बाबा के घर में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। ये सेवा का प्रभु प्रसाद मिलना भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। कि देखो, आपको ऐसी श्रेष्ठ धरणी पर आकर सेवा करने का परम सौभाग्य मिला हुआ है। वास्तव में आप आत्माएं महान भाग्यशाली आत्माएं हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर आना और सेवा करना, उसके लिए पुण्य कर्मों की पूंजी होना जरूरी है। वो पुण्य कर्मों की पूंजी आपके पास है, उसके आधार से आपको ये उपलब्धि, ये गोल्डन चांस प्राप्त हुआ है। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली आत्मा हैं। आप सोचो, सारा संसार जिसका गुणगान करता है भगवान का, वो हमारा गुणगान हर रोज मुरली में करता है, हमारे महिमा के गीतों के गीत गाता है, महिमा के फूलों की माला पहनाकर अमृत वेले हमें पहनाते हैं। तो कितने भाग्यशाली हैं आप सोचो। एक बार ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का सूक्ष्म वतन में डायलॉग चल रहा था। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते थे, बाबा मुझे आपके ब्राह्मण बच्चों को देखकर कभी कभी हंसी आती है। तो क्यों हंसी आती है? मैं उनको इतना ऊंची नजर से देखता हूँ, पता नहीं वो अपने को क्यों ऐसी ऊंची नजर से नहीं देखते हैं। अब ब्रह्मा बाबा तो भाई हमारी बाजू लेंगे ना, ब्राह्मण होने के कारण। ब्रह्मा बाबा कहने लगे, बाबा धीरे धीरे उनको नशा चढ़ेगा और हमारी बाजू लेकर उस बात को बाबा ने पूरा किया। अभी हमें ये सेवा करने के लिए जो नशा चाहिए, वो नशा क्यों नहीं चढ़ता है, उसका कारण बताइए। ये सारे खुदाई खिदमतगार बच्चे बाबा के बेटे हैं, खुदा स्वयं हमें सेवा देने के लिए बंधे हुए हैं, खूब सेवा देते हैं, लेकिन वो सेवा करने के लिए, विश्व परिवर्तन का कार्य अच्छी तरह से करने के लिए आवश्यकता है ईश्वरीय नशे की। वो नशा हमें क्यों नहीं चढ़ता है बताइए? वो नशा इसलिए नहीं चढ़ता है, सतयुग त्रेता युग में हम सभी बहुत रॉयल पोजीशन में रहे, राजे महाराजे बन के रहे, बड़े रॉयल परिवार में हमने पार बजाया, लेकिन जैसे द्वापर कलयुग में गए, माया ने किडनैप किया और जेल में ठोक दिया, 2500 वर्षों तक माया के गुलाम बनकर रहे, उसके कारण हमें नशा नहीं चढ़ता है जितना चढ़ना चाहिए। इसलिए हमें अच्छी तरह से बजाओ ना, हमें द्वापर कलयुग को नहीं देखना है, हमें सतयुग त्रेता युग को देखना है। बाबा कहते सतयुग त्रेता युग में जो सिंहासन है, ये सिंहासन पर बिठाने के लिए आप बच्चों के बिना मेरे पास कोई है ही नहीं जिसको मैं बिठा सकूं, आप ही महान बच्चे हैं, लेकिन आपको सिंहासन पर बिठाने के लिए विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनकर अपनी प्रजा बनानी पड़ेगी। उसके लिए बस सेवा और शिवा, ये दो ही बातें मुझे नजर आती हैं, तीसरी बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बस बाबा की याद, शिवा या सेवा, उनकी सेवा, ये दो ही बातें मुझे नजर आती हैं। तो भाग्य का सितारा हमने खूब चमकाना है। स्वयं भाग्य विधाता ही हमारे बाप बन चुके हैं, जितना चाहे भाग्य लूट सकते हैं और लुटा सकते हैं। बाबा कहते आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सागर के पास गए हैं तो सागर नहीं ये कहता है लोटा पानी लो बाल्टी लो, सागर तो कहता भाई पाइपलाइन लगा लो ना, मेरा क्या जाता है, जितना मर्जी लो ना आप। तो बाबा खजानों का सागर हमें मिला हुआ है, तो उस खजानों से हमें खूब खजाने लेने हैं और दरिया दिल बन के अनेक आत्माओं को वो खजाने बांटते जाना है और अनेकों की दुआएं जमा करते जाना है, क्योंकि जितने हम खजाने बांटते जाते हैं उतने दुआओं का खजाना हमारा बढ़ता जाता है। संगम युग में हमारी कमाई है दुआओं को जमा करने की कमाई। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दुआओं का खजाना ही साथ में चलता है और उसके आधार पर ही हमें भविष्य उज्जवल प्राप्त होता है। इसलिए दुआएं देना और दुआएं लेना, इसी बिजनेस में हमें सारे दिन भर में बिजी रहना है। एक बार बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि आत्मा समझकर सामने आने वाले व्यक्ति को आत्मा देखते हैं, फरिश्ता देखते हैं, तो ये भी पुण्य कर्म है। क्यों? क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा उस आत्मा के तरफ प्रवाहित होती है तो उससे उसको सुकून मिलता है, तो ये भी पुण्य कर्म है। इसलिए हमें ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना सदा पनपती रहे, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। जब भी किसी आत्मा को मिलते हैं, किसी की भी कमी कमजोरी हमने देखना नहीं है। हर एक आत्मा में कोई ना कोई कमी या कमजोरी होती ही है, हमने उसको नहीं देखना है। क्या देखना है? उस आत्मा की आदि स्वरूप को और अनादि स्वरूप को और अंतिम स्वरूप को देखना है। जब ये आत्मा धरा पर आई थी सतप्रधान थी, और जब वापस जाएगी सतप्रधान बनकर जाएगी, ऐसा दृष्टिकोण जब हमारा होता है तो सबके प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है, किसी की कमी कमजोरी हमें नजर ही नहीं आती है। तो नजर बदलती है तो नजारे भी बदलते हैं, और हम विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा पहाड़ है उसमें हम सहयोगी बनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सभी ब्राह्मणों की वृत्ति एक जैसी होगी, ये एक जैसी वृत्ति रखना भी विश्व परिवर्तन के कार्य में अंगुली लगाना है, तभी हम इतना बड़ा पहाड़ उठा सकते हैं। एक वृत्ति होना, एक जैसे वाइब्रेशन मेंटेन करना, ये हमारा सहयोग है ऐसे बेहद की सेवा में सहयोगी बनना। तो इसलिए विश्व पिता के हम सभी विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, और विश्व का कल्याण करना यही हमारा धर्म कर्म है। इसलिए हमें अपने धारणा पर, मनसा वाचा कर्मणा पर बहुत अच्छी ध्यान देना है, ऐसा कोई कर्म हमारे से ना हो, ऐसा कोई बोल हमारे मुख से ना निकले जिससे सेवा के बजाय डिससर्विस हो। इससे भी बोझ चढ़ता है, और वो सूक्ष्म बोझ हमें ओढ़ती कला में ओढ़ने नहीं देता है। इसलिए सदा खुश रहना है, खुशियां बांटना है, यही हमारा नारा हो। क्योंकि बाबा ने कहा है आप सभी इस बेहद ड्रामा में हीरो एक्टर हैं, एक्टर नहीं हीरो एक्टर हैं, और हीरो एक्टर के कारण मैंने आपको एक ड्यूटी दी है। कौन सी ड्यूटी दी है? सदा खुश रहना है और खुशियां बांटना है, यही आपको ड्यूटी देना है। इसलिए हमारे चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट सदा छाई रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। कोई भी हमारे चेहरे को देखें, चलन को देखें, तो उसको कुछ न कुछ मिले। खाली हाथ कोई भी मेरे घर से, मेरे दर से जा नहीं सकता है, ऐसी श्रेष्ठ धारणा हमारी होना जरूरी है। क्योंकि हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं, इसलिए हमेशा हमें कुछ न कुछ देते रहने की भावना मन में सदा रखनी है। उसके लिए हमें स्वयं को माला माल अनुभव करना है, और खजाने हमारे भरपूर रहे, गोडाउन हमारे भरपूर रहे, ताकि हम अनेक आत्माओं की सेवा खूब बड़े दिल से कर सकें, अनेक आत्माओं को आगे बढ़ा सकें, और तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा में सहयोगी बनते रहें। तो जितना हम इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनेंगे, उतना संगम युग में बाबा के दिल की दुआएं भी मिलेगी, और आने वाली सतयुगी दुनिया में भी बहुत श्रेष्ठ राज भाग हमें मिलेगा, श्रेष्ठ पद की भी प्राप्ति होगी। जिसने दिलाराम के दिल को जीत लिया, उस ऊपर वाले साहब के दिल को जीत लिया, वो जो चाहे आपको दे सकता है, जैसी पोजीशन आपको सतयुग में चाहे वो दे सकता है, उनके ही हाथ में सब कुछ है। इसलिए हमें उस दिलाराम के दिल में जगह बनाना है, और उनका जो इतना विशाल कार्य है विश्व परिवर्तन का, उसमें भी हमें सहयोगी बनना है। इसलिए अभी चंद घड़ियों के लिए हम बहुत पावरफुल योगाभ्यास भी करेंगे और विश्व परिवर्तन के लिए मनसा सेवा का भी प्रयोग करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ अपने। सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे क्योंकि नींद का समय है, अभी सुस्ती का समय है, इसलिए चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। मैं निराकार ज्योति बिंदु विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। स्वयं विश्व पिता ने मुझे अपने भाग्य का निर्माण करने हेतु विश्व परिवर्तन के सेवा में सहयोगी बनाया है। विश्व का कल्याण करना ही मेरा धर्म और कर्म है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। शक्तियों की किरणें मोह शक्तिशाली आत्मा से सारे विश्व में फैल रही हैं। मोह शक्तिशाली आत्मा के चहुओं बहुत सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। क्या कहने मेरे भाग्य का, भाग्य विधाता ने स्वयं मेरे भाग्य को चमका दिया है। भाग्य का सितारा जगा के चमका दिया है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह से न्यारी होकर पुष्पक बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रहे हूं। जा रहे हूं फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुके हूं जहां सफेद सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मज आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। विश्व पिता प्रजा पिता ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। प्यारे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा ने मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बाबा मुझे नैनों से इशारा कर रहे हैं, हे मेरे विश्व परिवर्तक बच्चे, जाओ अपने फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व के ग्लोब पर चक्कर लगाकर शांति शक्ति की सकार देकर आओ। मैं फरिश्ता विमान की तरह, हनुमान की तरह विश्व के ग्लोब पर उड़ रहा हूँ। ज्ञान सूर्य शिव पिता से डायरेक्ट शांति शक्ति की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर सकाश पड़ रही है। अनेक आत्माओं को सुकून अनुभव हो रहा है। मैं फरिश्ता एक खंड से दूसरे खंड पर भ्रमण करते करते पुनः बाबा के समक्ष आकर विराजमान हो चुका हूँ। अभी अभी मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच चुके हूँ, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। ज्ञान सूर्य शिव पिता के समीप मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा बैठ चुके हूँ। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शांति शक्ति की किरणों की सकाश मज आत्मा पर पड़ रही है और मेरे द्वारा विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं पर पांचों तत्वों पर सकाश पड़ रही है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा विश्व कल्याणकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्ति शांति की सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मेरे द्वारा सारे विश्व के ग्लोब पर असंख्य आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर भी सकाश पड़ रही है। अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं भी मुझे मिल रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता के सानिध्य में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा बैठी हूँ। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ। स्वयं में परिवर्तन अनुभव भी कर रही हूँ। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं, समाई रहूं। ज्ञान सूर्य के संग में बैठकर उनके रंग में मैं आत्मा रंग रही हूँ। सच्ची होली मना रही हूँ। ज्ञान सूर्य से विभिन्न रंग की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। उनके संग का रंग मुझे लग रहा है परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्मवता इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, वापिस आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य मकान में भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। डायरेक्ट परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मोज आत्मा पर पड़ रहा है। मैं आत्मा शक्तियों की किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूँ। परम सुख की अनुभूति हो रही है। मेरे द्वारा शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। विश्व के वाइब्रेट करके वायुमंडल को भी परिवर्तन कर रही है। ओम शांति शांति शांति।